ओम शांति। 2 अगस्त 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ, मेडिटेशन में बैठो, विचार करो। क्या विचार करो? मैं आत्मा हूं, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूं। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। मालिक बन के क्या करो? ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। प्रश्न, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है? दुनिया में भी है तो बात के पास भी। कौन सी ऐसी एक बात है जिसको दुनिया वाले भी महत्व देते हैं और बाबा भी महत्व देते हैं? दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दुनिया की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है। तुम्हें भी क्या करना है? सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। सबको क्या सिखलाना है? मेडिटेशन सिखलाना है। जी, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया को काम, सोया का काम है डूबने वाले को बचाना। चुनाव चलाने वाला है, गाइड करने वाला है, उसका काम है डूबने वाले को बचाना। तो बाबा ने कौन सी नाव को लेके जाना? कौन सी नाव को लेके जाना? नाव किसे कहते हैं? शिवैया शिव बाबा है तो नाव कौन है? हम आत्मा। हम आत्मा का शिवैया है शिव बाबा। हम आत्मा का शिवैया है शिव बाबा। और हम डूबते कहां हैं? विकारों में। हम डूबते हैं विकारों में, तो हमें विकारों से निकालने का रास्ता, निकालने की विधि सिखाते हैं बाबा। तो खिवैया का काम है हमें डूबने से बचाना, तो उसके लिए वो रास्ता दिखाते हैं। हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो इन विकारों में डूबने से बच जाते हैं। बच्चे जानते हैं भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। नाव नहीं डूबी हुई, क्या डूबा हुआ है? बेड़ा। सारा संसार ही डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है? विकारों में। हर बात भारतवासियों के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं। कहेंगे ये भी तुम समझते हो, सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। सत्यनारायण की कथा भी यहाँ होती है, अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तो अमरनाथ की कथा तो किसी ने सुनी नहीं, किसी को पता नहीं कि क्या कथा सुनाई थी, ठीक है कि नहीं? फिर दुनिया वाले किसे कहते हैं अमर कथा के लिए? दुनिया वालों ने किसे अमर कथा बना दिया? दुनिया वालों ने सप्ताह जो भागवत रखते हैं, कृष्ण के जीवन लीला का वर्णन करते हैं, इसको अमर कथा बना दिया। और कैसे बनाया इसको अमर कथा? क्या गपोड़ा लगाया कि ये क्यों अमर कथा है? क्या नहीं, किसी ने सुनी नहीं तो फिर ये अमर कथा कैसे है? तो वो गपोड़ा कहानी सुनाते हैं कि जिस समय भगवान शंकर ने अमर कथा सुनानी थी कि कोई और ना सुन ले, तो उस समय जितनी देर तक सुनानी थी उस समय तक के लिए सारे संसार को उन्होंने मतलब एक किस्म से कुछ भी सुन ना सके, चाहे वो जो भी हो, जड़ चेतन जो भी हो, वो इस चीज को, क्योंकि चेतन ही सुन पाएंगे, जड़ तो सुन ही नहीं सकते, सुन ही ना सके, चेतन कोई भी सुन ना सके, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। जैसे ही उनका ये संकल्प पूरा हुआ तो एक तोते के अंडे में से तोता निकल आया, अब वो सुन सकता, वो वहीं पर था, वो सुन सकता था। कबूतर बैठे थे, पार्वती सो गई, शंकर जी सुनाते रहे, और वो कबूतर जो है ना वो तो सुनते नहीं ना, उनको तो कुछ सब बता नहीं सकते ना, कबूतर सुनते हैं तो वो बता नहीं सकते, तो वहां एक तोते का अंधा फूट गया और वो तोता बाहर निकल आया। अब वो जो संकल्प था वो उस पर लागू नहीं होता था, अब वो बाद में शंकर को पता लग गया, वो उसके पीछे भागे, परंतु हाँ त्रिशूल लेकर भागे भागे भागे, आखिर वो भाग करके उनकी पहुंच से बाहर हो गए और उन्होंने सुखदेव के रूप में फिर जन्म लिया। उसने मार दिया, उसको मार दिया, मतलब हाँ, तो या कैसे भी, मतलब वो तोता जो है ना फिर सुखदेव के रूप में सुखदेव बना, फिर उसने ये भागवत लिखी। इसलिए ये है वो सच्ची सच्ची अमर कथा जो किसने सुनाई थी, शंकर जी ने। अब इस कथा को सुनकर कोई एक भी अमर किया हो तो बता दो, वे अमर कथा से अमर तो होना चाहिए ना, मतलब गपोर कहानियां ऐसी सुना देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वास्तव में उस कथा, वो कथा ना थी ना है और ना, और वो कथा वास्तव में बाबा आकर समझाते हैं, शिव बाबा आकर हम पार्वतियों को ये सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं कि हम आत्माएं ही अमर हैं। वो कथा रोज जो सुनाते हैं ये है वो सच्ची सच्ची अमर कथा। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो, किसको याद करते हो, भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं, उनकी साधना है आयथार्थ, सिखलाने वाला खिवैया वा बागवान तो कोई है नहीं, गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए, योग साधना कहा जाता है, वे तो मनुष्य मनुष्य को कराते हैं, वो योग साधना मनुष्य मनुष्य को कराते हैं, अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परम पिता परम आत्मा, कांटों के जंगल का मालिक है रावण, कांटों के जंगल का मालिक है रावण, माया रावण कांटों का जंगल बनाती है, ये तुम्हारी बातें भी कोई कोई जानते भूल जाते हैं, माया भुला देती है, मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है, मेडिटेशन कैसे करो ये भी बाप सिखलाते, ये भी बाप सिखलाते हैं, तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती, दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है, दिन में तो खाना पीना खेलना कूदना धंधा दोरी करना होता है, धंधा दोरी करना होता है, इसमें याद थोड़ी रह सकती है, कहते तो बहुत है कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु है तो बड़ा मुश्किल, है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सत्तो गुणी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का समय सबसे अच्छा होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं, हाँ कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा। काम करते समय भी क्या रहे, याद। क्या मतलब होता है कर्म करते समय याद का मतलब क्या होता है? हमारा हर काम बाबा की श्री मत पर हो रहा है तो हमें बाबा याद है, नहीं तो बाबा याद नहीं। याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा है, परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूं, अंदर ये नशा रहता है, मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ, मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूं, वे याद बड़ा मुश्किल है। और ये याद रहती है कि मैं प्रजापिता हूँ, सारी प्रजा का बाप हूँ, मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, और वो याद कम रहती है कि मैं आत्मा हूँ, है ना? बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, बाप सिखलाते भी हैं, ये तो जानते हैं कि हम बागवान हैं, बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे, मूली कांटों माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे, माली हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं तो बाबा भी फूल लगाते हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, जंगल बनाने वाली कौन है? माया। और बाबा बनाने वाले हैं फूल बगीचे। उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं, ये तो ज्ञान मिला है। बाबा बागवान है, शिवैया है, बाबा बागवान भी है और शिवैया भी है, रहम दिल भी है, बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है ये कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, योग के साथ साथ क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी ना किसी ने किसी की याद में बैठते होंगे, और कोई ना कोई गुरुजी बाबा उसकी याद में बैठते होंगे। ज्ञान की बात ही नहीं है, काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी, काली की शक्ल दिखाई देगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वे है भक्ति मार्ग, ना बाप की याद ना वर्षे की याद रहती है। भक्ति बहुत तरीके से करते, भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं, हमारी भी है गुप्त माला। हमारी कैसी माला है? गुप्त माला। तो ये रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं, बाबा को छोटेपन का अनुभव है, बाबा को छोटेपन का अनुभव है। जैसे बाप फेरते थे, मतलब ब्रह्मा बाबा फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में माला फेरते थे, राम राम कहते थे, मतलब हमारे पिताजी भी फेरते थे माला, तो उनको देखकर हम भी फेरते थे, राम राम कहते थे। बस ज्ञान कुछ भी नहीं, अभी तुम बच्चों में ज्ञान है। अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं, कितना बड़ा बगीचा है। पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया, कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी ये ज्ञान है, बाबा में भी ये ज्ञान है, हमारे में भी ये ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर सोता रहता है, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, दोनों चीजें याद आती हैं। वे तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, उनको तो जरूर तत्व ही याद आए। तत्व ज्ञानी क्या होते हैं, वो तत्वों को याद करते हैं। कोई आकाश तत्व को याद कर रहा है, कोई वायु तत्व को याद कर रहा है, कोई अग्नि तत्व को याद कर रहा है, तो तत्व के योग्य होते हैं, वो तत्वों से अपना और तत्वों को सिद्ध करते हैं, उनके ऊपर अपना धारणा करते हैं। उनको तो जरूर तत्व ही याद आएगा, बस तत्व में लीन हो जाना है। हम जाकर तत्व में क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। रचयिता और रचना का तो उनको पता ही नहीं कि कौन इस सृष्टि का रचयिता है, कैसे उसने इसको रचा है, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं करते, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो उनों की और तुम बच्चों की बात और उनों की और तुम बच्चों की बात और है। बाबा बीज रूप है, हमको ये नॉलेज है, रात को बैठने से अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितना हठ योग आदि सिखलाते हैं, अभी तो समझ मिली है। बाप को याद करने से उनकी सारी रचना, उनकी सारी रचना झाड़ याद आ जाती है। कैसे कैसे हम सब आत्माएं परम धाम से आती, हम 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। कितने जन्मों का चक्र लगाया, 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। अभी हम जाते हैं वापस, ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते हैं, ज्ञान धन को भी याद करते हैं, धन देने वाले को भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी, पक्की होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकते हो, मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं, किसको भी समझा सकते हो कि हम योग में कैसे बैठते हैं, ये सेवा करनी है। तुम किसको भी समझा सकते हो मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं, मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मतें मिलती हैं, फलाने को याद करो, यहाँ हम सब एक मत पर है, एक की ही याद में रहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। परंतु क्या, परंतु की वाक्य लेते क्या लेते नहीं, एक मत लेते ही नहीं है, अपनी मत को ही बाबा की मत में मिलाकर चला रहे। मतलब ये देखिए ना, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं, कोई डिसीजन देने वाला है ही नहीं। देखिए बाबा होता तो डिसीजन देता है नहीं, अब उनको कोई डिसीजन देने वाला नहीं है, कोई तो ध्यान में ही लगाए जा रहे हैं, ध्यान ही लगाए जा रहे हैं, बस बाबा रूम में जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, बाबा के चित्र को देखते रहते हैं। उनको समझा दिया कि जैसे सूरज के सामने बैठ जाओ, धूप अपने आप आ जाती है, आपको लेने की जरूरत है कुछ नहीं, आप बाबा के रूम में जाके बैठ जाओ और बाबा से आपके पास सब कुछ आ जाएगा। बात वो समझते बाबा रूम में जाके बैठो, अपने आप हमें सब कुछ मिल जाएगा। अब ये बाबा की याद तो बाबा ने कहीं नहीं कहा, कैसे बैठ करके बाबा को याद करो। और जहां कमेंट्री कर रहे हैं, संकल्प दे रहे हैं, देखो संकल्प बहुत अच्छी चीज है, परंतु संकल्प श्री मत पर है, संकल्प काल्पनिक तो नहीं है, ठीक है, काल्पनिक संकल्प हम देते हैं, परंतु जो हम संकल्प स्वयं को दे रहे हैं, जैसे कि कल की मुरली में हमने देखा कि संकल्प जो है दिया जाता है कि संकल्प जैसे होंगे, हम एक संकल्प की शक्ति इतनी पावरफुल है कि हम कहीं भी जाएं एक सेकंड के अंदर कहीं भी पहुंच जाए, ठीक है, देरी नहीं लगती। संकल्प से हम अपने अंदर खुशी भर सकते हैं और संकल्प से अंदर अपने अंदर, परंतु संकल्प यथार्थ होगा तब, धरातल पर होगा तब, संकल्प हवाई किला होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। संकल्प में हमें निश्चय नहीं होगा तो भी नहीं मिलेगी। संकल्प यथार्थ अपने आप को संपन्न होगा, सच्चाई के आधार पर होगा, तब उसके आधार पर आप कर सकते। क्योंकि हमारे आत्मा क्या है, संकल्प तो है, बुद्धि तो है, मन ही तो है, आत्मा की स्पीड वही है जो संकल्प की स्पीड है, ठीक है नहीं? और हमारे संकल्प यदि यथार्थ हैं कि मैं आत्मा ने संकल्प किया और यहाँ से मेरा माँ का गर्भ जो है कहीं भी धरती के ऊपर तैयार है, तो मैं वहां पहुंच गया और वहां जाकर के मैंने अपना शरीर बनाना शुरू कर दिया। परंतु वो संकल्प लेने की भी तो ताकत चाहिए ना। अमेरिका पहुंचना है तो अमेरिका किस लिए पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कहां पहुंचना है, मतलब यथार्थ होगा तब, यथार्थ होगा तब। क्योंकि मैं आत्मा ने यहां से शरीर को छोड़ा है और मेरा गर्भ जो है, भ्रूण जो है, वो अफ्रीका में तैयार हुआ है, तो मुझे सारा क्लियर कंफर्म है, वो मेरे पार्ट में नूंदा हुआ है, तो मैं उस पार्ट के अनुसार वहां पर जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को क्लियर होगा पार्ट के अनुसार। तो इसी प्रकार से संकल्प भी पार्ट के अनुसार आएगा तो हम वहां पहुंचेंगे। बाबा को संकल्प पार्ट के अनुसार आता है, इसलिए वो पहले कोई संकल्प नहीं चलाता। बाबा पहले कोई संकल्प नहीं चलाता, अपने पार्ट के अनुसार उनको संकल्प आया, बाबा ने बोल दिया। पहले नहीं सोचते कि मैंने क्या भाषण करना है, क्या बोलना है, क्या कराऊंगा, क्लास में जाके क्या बताऊंगा, नहीं, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, जो आया और उसी समय आकर सुना। तो ये तो दुनिया में कोई सिखाते नहीं है। संकल्प करना ठीक है, पर तो विजुअलाइजेशन में तो हम कल्पना कर रहे हैं, हम उस वहां जा रहे हैं, परम धाम का पता नहीं हमें, हम उस परम धाम में घूमने जा रहे हैं, तो एक कल्पना लोक में जा रहे हैं। उससे क्षणिक शक्ति तो मिलेगी परंतु एक्चुअल शक्ति नहीं। इसी प्रकार चक्रों को याद करना, रंगों को याद करना, ठीक है, ये सारे के सारे अपने मन मत पर योग चल रहे हैं, जबकि योग का मतलब है बाबा की एक की ही याद में रहते, बस एक ही बात का हम कहना मानते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है, सबको एक मत मिलती है, हमने उसी एक मत पर चलना है, यही मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना, हम आत्मा से परमात्मा तो नहीं हो सकते ना। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस घर जाना है, परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या, वो तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हाल में ले आओ, कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ, उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं, रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी मेडिटेशन करते हैं, हम याद करते हैं एक बाप को, अर्थात उनका कहना मानते हैं। बाप का फरमान है, परमात्मा का ऑर्डर है कि मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं, जरूर पहले देवी देवताएं थे, उनके ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं, ये चक्र का राज अच्छी रीति समझना पड़ेगा हमको। बाप और उनकी रचना का ये चक्र याद रहता है, बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है, हम सब की एक ही मत है, हम सब की एक ही मत है। हम हैं श्री मत पर वे पतित पावन, बाप ही आकर बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो बाप को जरूर याद करना पड़े, बाप को जरूर याद करना पड़े ना, बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना की ही नॉलेज देंगे, बाप रचयिता है तो किसकी नॉलेज देंगे, रचना की ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। पतित पावन तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे ना, ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे, तो वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। बोलो सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, ये तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। कितने जन्मों से हम पाप करके आए, अब वो हिसाब किताब है, वो सारा हिसाब किताब तो हमने पूरा करना ही है। तुमको समझाना है बाबा आया हुआ है, मौत सामने है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे, तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए, अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा, तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो, लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो। क्योंकि क्यों याद करते हो, क्योंकि वे है अविनाशी बाप, विनाशी लौकिक शरीर का जो बाप है, जो से विनाशी वर्षा मिलता है, विनाशी बाप से हमें विनाशी वर्षा मिलता है और अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्री मत से श्रेष्ठ बनते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बिरादरी निकलती है। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास, और ये है सतो प्रधान सन्यास। कब आए सन्यासी, आज से 1500 साल है, इससे पहले कोई सन्यासी द्वापर कब था, आज से 1200-1250 साल पहले द्वापर ही तो था। द्वापर में जो सन्यासी थे वो फिर भी केवल 1250 साल पहले तो द्वापर था ना, ये सन्यासी रजो प्रधान सन्यासी जो आए, क्योंकि सन्यास धर्म जो स्थापन किया वो शंकराचार्य ने किया। हाँ, इससे पहले जो भी सन्यासी थे वो कोई अलग धर्म नहीं था, मतलब वैसे ही वो घर में रहते हुए जहाँ भी रहते हुए उनको दिल आया छोड़ के चले गए। विवेकानंद तो 100-150 साल पहले आया, ये तो अभी के था, और क्या स्वामी दयानंद 125 साल पहले थे, सिर्फ ज्यादा टाइम थोड़ा हुआ है। तो मतलब 2028-29 के आसपास ये सारे अभी के हैं। हाँ, 10-20 साल का, हाँ, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद और ये सारे लगभग इनके 10-20-25-30 साल का हाँ अंग्रेजों के टाइम में, 1600 नहीं भाई, अभी 1800-1900 बस अभी की बात है। अब इनके सबके डेट्स देखोगे ना गूगल में तो आपको पता लग जाएगा। हाँ हाँ मतलब इसी पीरियड के हैं, 1800 और 1900, 1900 अर्ली, 1800 के लास्ट में ही इन सब का आपको मिलेगा, चाहे वो थियोसॉफिकल थी, अंग्रेज आए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आई, तो ऐसे सारे ये जो धर्म के अंदर आया परिवर्तन, एक लहर चली वो समाज को सुधारने की, वो अंग्रेजों के बाद ये चली। ये है सतो प्रधान संन्यास, वो है रजो प्रधान संन्यास, क्योंकि शंकराचार्य से पहले ये मत चल रहे थे, परंतु उन मतों को देने वाले जो है वो वही वही थे बस थोड़े थोड़े, क्योंकि जनसंख्या भी थोड़ी थी ना। मतलब जब अपना शुरू हुआ क्या बोलते हैं द्वापर युग, युग शुरू होता है जिस समय संस्कृत लिखी गई है, संस्कृत में वेद लिखे गए हैं, उस समय इतने मुट्ठी भर लोग थे जिनका काम एक ही भाषा से चल सकता था, उनको किसी दूसरी भाषा की जरूरत नहीं थी। तो थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ी तो दो भाषाएं हुई, और जनसंख्या बढ़ी तो तीन हुई, चार हुई, ऐसे ही जनसंख्या बढ़ने के साथ ही भाषाएं भी बढ़ती गई। मतलब संस्कृत भाषा में तो बात करने वाले थोड़े से ही लोग। जब कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, बाण भट्ट ने कादंबरी लिखी, व्यास ने महाभारत लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ये चारों के चारों समकालीन एक ही काल में हुए हैं, और इन्होंने संस्कृत में जब भाषा लिखी वो संस्कृत पाणिनि की थी, व्याकरण के अनुसार थी, ये शुद्ध संस्कृत थी, और वेद लिखे गए संस्कृत, वैदिक संस्कृत भाषा कहो चाहे अशुद्ध संस्कृत भाषा कहो, उसमें ग्रामर के नियम लागू नहीं होते थे। तो 2000 साल पहले ग्रामर के नियम लागू नहीं होते थे, लगभग 2000 के आसपास, 2003 में पाणिनि हुआ था और उसके बाद व्याकरण बनी। अब पाणिनि उस टाइम इतने सारे लोगों में एक, अब उन्हें पढ़ने कौन जाते होंगे, थोड़े से लोग पढ़ने जाएंगे, अब वही संस्कृत जानेंगे, अब जो पाणिनि के पास पढ़ने नहीं गया उसको व्याकरण का क्या पता, उसको व्याकरण का क्या पता। अब उससे जो 4-5-6-10 लोगों ने पढ़ा होगा उन्होंने आगे समझाया, तो धीरे धीरे संस्कृत भाषा का प्रचार हुआ। तो वो भी प्रचार पढ़े लोगों के पास था, आम जनता के पास तो वो भी नहीं था। और आज से 1000 साल पहले जब चीन यात्री हीनयान पायन भारत में आते हैं, तब भारत में केवल 5 भाषाएं, सारे भारत में सिर्फ 5 भाषाएं। और जब मुगल भारत में आए तब भारत के अंदर 12 भाषाएं, और उसके बाद फिर भाषाओं का बढ़ना शुरू होता है, जनसंख्या का भी विस्फोट होता है, जनसंख्या भी बढ़ना शुरू होती है। तो आज हमारे देश में 22 को मान्यता प्राप्त है। तो जो भी है, मतलब कहने का है कि ये जिनको राष्ट्रभाषा कहा जाता है, और बाकी जो है ना सारी ऐवें ही बोलियां हैं। तो रजो प्रधान संन्यास, तो ये है सत्व प्रधान संन्यास, ये है राजयोग। क्योंकि अंग्रेजों के आने से लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले केवल गुरु के लिए होते थे, मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पर फर्स्ट जो है ना लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, जहाँ उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अदरवाइज पढ़ने के लिए तो भारत से वहां जाते थे, या गुरुकुलों में जाके पढ़ते थे, या तो इंग्लैंड जाते थे पढ़ने के लिए, या कहीं जाते थे पढ़ने के लिए, सारे बाहर गए। हाँ सारे यहाँ था ही नहीं कोई, तो ये इन्होंने फिर यहाँ पर लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज खोला कि वहां के लोगों को यहाँ आना पड़ता है, वहां पेपर दें, पेपर वहीं से बन के आता था, पेपर यहाँ देते। इसी प्रकार यहाँ तक कि तो जो मैं बिजवासन स्कूल में था वो अंग्रेजों के टाइम का स्कूल था, मतलब अंग्रेजों के टाइम से ही वो स्कूल बना, कुछ समय के पुराने उर्दू के ही सारे रिकॉर्ड जो है ना रखे हुए। कहने का भाव ये है कि ये भाषा अभी है, भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए ये समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं, भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना, वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है और आते भी भारत में है। उनको भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है, उस श्री की मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैक समझो, बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानो, और ये कोई नहीं जानते, सत्यु की आयु ही इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वे जर्जरी भूत हो जाता है। अब ये सारी दुनिया नरक है, घर तो क्या सारी दुनिया ही नरक है, ये है ही कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं, बाप आकर फिर गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं, बाप आकर बहिष्ट स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का बगीचा जंगल किसको कहा जाता है, तुम देवी फूल बन रहे हो। तो चिंतन चलता रहना चाहिए, क्या चलता रहना चाहिए, चिंतन चलता रहना चाहिए। बाबा में भी ये नॉलेज है, बच्चों में भी ये नॉलेज है, ऐसे ऐसे चालाक चलाने से रात को बड़ा मजा आएगा, ऐसे ऐसे समझाएं, बिचारे कुछ नहीं जानते, इसलिए अपने को तरस पड़ता है, ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उनकी रचना को जानते हैं, तो उनको परिचय देना है आत्मा का और परमात्मा। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं, समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए, अविनाशी ज्ञान रत्न है तो फिर दान करना चाहिए, दानी की बहुत महिमा करते हैं, अखबार में भी पढ़ता है, रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, तुम तो धार्मिक बुद्धि वाले हो, दान ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? तो बाबा दान क्या करना चाहता है, पैसे ज्ञान दान, दान तो जरूर देना है, ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है, पहले एक धर्म था पीछे ये धर्म निकले, ये सब बिरादरियां हैं, ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक रहता है, बोलो हमारा मेडिटेशन चलकर देखो, हमारा मेडिटेशन चलकर देखो। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वो मेडिटेशन हॉल देखकर खुश होते हैं, रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है, हमारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है, परंतु बच्चे नंबर वार, परंतु बच्चे नंबर वार हैं, कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता, कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे, है बहुत सहज, है बहुत सहज बात, समझाना है। हम याद में कैसे बैठते, हम याद में कैसे बैठते हैं, मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि हम किसको याद करते हैं। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परम पिता परम आत्मा है, जो सबका बाप है, वे पतित पावन गॉड फादर हमको राज योग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो ना सीखो, हम सबकी तो एक ही मत है, हम सबकी तो एक ही मत है। श्री श्री से हम मत ले रहे हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल, वैसे बच्चे मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते, मनुष्य से देवता बच्चों को एक बाप ही बनाते हैं। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मजा आएगा, रात को भी बहुत मजा आएगा। अच्छा मीठे मीठे चिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अमृत वेले उठ याद में बैठ, ज्ञान का रमण करना है, ज्ञान धन को भी याद करना है। तो ज्ञान दाता को भी याद करना, तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है, सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है। एक मत होकर रहना, एक मत होकर हमें रहना है। वरदान है रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन, मतलब हम खुद प्रसन्न है ना, हमारी प्रसन्नता का सबके पास क्या पहुंचेगा, वाइब्रेशन पहुंचेगा। सब देखेंगे ना कि बहुत खुश है भाई, कौन सी चक्की का आटा खाता है। और सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले, क्योंकि जो सर्व प्राप्ति स्वरूप होगा वही तो संतुष्ट होगा, वही तो प्रसन्न होगा, क्योंकि सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। आपको कुछ भी अब पाने की इच्छा नहीं है तो आपकी खुशी गायब क्यों होगी। जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुंचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन है जो स्मृति स्वरूप रहते, जो स्मृति स्वरूप मतलब परमात्मा की डायरेक्शन पर देखने बोलने और कर्म करने वाले बनते हैं, उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव, कोई भी परिस्थिति आएगी नथिंग खेल है नहीं, नथिंग नहीं खेल अनुभव होती है। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।